समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार सर फिरोजी।
शगुन, रोजाना की तरह आज भी कार्यक्रम परिक्रमा में काफी कुछ होने वाला है। अपने श्रोताओं को लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर और जानेंगे कि देश में आज क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। लेकिन शगुन, उससे पहले क्यों ना जिक्र कर लिया जाए उस एक दिन का जो आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है।
विच इज
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फादर्स डे की।
राइट,
आज दुनिया भर में इंटरनेशनल फादर्स डे मनाया जा रहा है। शगुन, किसी शायर ने कहा है कि मुझको छाओं में रखा और खुद वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। शगुन, ये बात बिल्कुल सच है कि पिता जो होते हैं वो अक्सर खुद बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं पिताओं के जीवन में, लेकिन वो हम पर उस परेशानी को, उन चुनौतियों को जाहिर तक नहीं होने देते।
Rightly said, well said Sir Firozi. Well, fathers, they give us roots to stay grounded and wings to soar high in our lives. They are providers, they are mentors, and they are our role models as well.
जी बिल्कुल शगुन, तो आज का दिन जो है ये खास मौका है कि जो पिता हमारे लिए त्याग करते हैं, जो प्रेम उनके मन में हमारे लिए होता है, उसे आज हम सेलिब्रेट करें। आज के दिन अपने फादर्स को स्पेशल महसूस कराएं, उन्हें अच्छे अच्छे संदेशों के साथ आज के दिन की शुभकामनाएं दें। और शगुन, आज संडे भी है तो अपने फादर्स के साथ कुछ वक्त हम बिता सकते हैं। जी बिल्कुल, कई सारी मूवीज हैं जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, इवन फादर और
fathers,
जी बिल्कुल बच्चों और पिताओं के रिश्ते को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो मूवीज भी देखने हम जा सकते हैं। और इसके अलावा फादर्स की कई बार फादर्स जो हैं चीजों को टालते रहते हैं, उनकी टू डू लिस्ट में कोई एक काम होता है जो वो कर नहीं पा रहे होते, तो आज का दिन कहीं ना कहीं एक मौका है कि ये काम भी हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं।
एंड दे ऑफन स्ट्रेस देमसेल्व्स विद दिस task which is at hand and which they could not do. And in most families, as we have seen Sir Firozi, fathers are often the silent strength behind every family, the steady hand that guides, protects and supports through every stage of life.
जी बिल्कुल, तो आज का ये दिन है कि उनका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम किया जाए।
right.
और फादर्स डे को बहुत ही खूबसूरत तरीकों से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम भी एक बहुत ही खूबसूरत गीत प्ले करके दुनिया भर के पिताओं को ट्रिब्यूट दे रहे हैं।
पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता।
Yes, wishing a happy Father's Day to all the wonderful fathers of the world who shape lives with their strength, wisdom and love. With that, let's begin with our program. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM with Shagun Chopra and Sir Firozi again. And for you, we have a selection of news first. Then we have a discussion segment, Dateline India, in which we have this topic as well, Father's Day, the wonderful day today. And also we have another topic which we'll tell you about later. We also have reports, capsules and our tributes at the ending of the program. And all this over the next 30 minutes. So stay tuned with us, listeners. But first, we'll begin with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया यात्रा आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर। यात्रा के प्रथम चरण में आज शाम वे साइप्रस पहुंचेंगे।
All seven persons on board killed in helicopter crash near Gaurikund in Kedarnath area of Uttarakhand. Chopper services suspended for 2 days.
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% बढ़कर 51.5 GW हुई।
At least 10 people killed in Iranian strikes on Israel amid attack on key oil and energy sites by Israel in Tehran.
और टेबल टेनिस में मानव ठक्कर और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने WTT कंटेंडर्स कब्जे के पुरुष डबल्स फाइनल में प्रवेश किया।
A And yes, now it's time for our segment Dateline India, and let's continue with Father's Day, International Father's Day today.
जी शगुन, और जैसा कि हमने पिछले ओपनिंग में भी अपने शो की बात की कि यू नो एक दिन जो है ये दिन आज खास मौका है जब हम फादर्स के प्रति उस त्याग उस कंट्रीब्यूशन का आभार जताएं जो वो पूरी जीवन हमारे जीवन में करते हैं. कहीं ना कहीं जिस तरह माँ हमारे जीवन को आकार देती है उतना ही योगदान पिताओं का भी हमारे जीवन को आकार देने में होता है.
वेल यस फिरोजी, फादर्स they play a range of role in our life, from being our protectors to serving as our role models. They are truly special. Well, yes, and Father's Day is marked every year to recognize and to honor the sacrifices that fathers make for their children. And this day is a very well opportunity for every child to thank the man who has always been there to support them and to help them prosper in their lives as well.
बिल्कुल शगुन, और अक्सर हम माँ की ममता की तो बात करते ही हैं कि किस तरह माएँ जो हैं वो जीवन को आकार देने में एक बच्चे की बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं. अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चा जो है जो पहला शब्द बोलता है वो माँ ही अक्सर होता है, लेकिन
Mostly, yes.
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेकिन पिता का त्याग जो है, माँ की जो ममता है वो पिता के त्याग को ओवर शेडो कर लेता है.
जी.
तो आज का दिन उस त्याग उस प्यार उस सम्मान को याद करने का दिन है.
एंड यस, दिस हार्टफेल्ट ओकेजन इज टू ऑनर द strength, the love and the guidance of fathers and father figures globally. And whether it's through a thoughtful message or a warm wish or an inspiring quote, I think this day is perfect for showing appreciation and also gratitude to the men who raised us. And well, yes, let's delve into the history of this particular day a bit.
Jee.
Well, the idea of Father's Day, it dates back to the early 20th century in the United States. The beginning of Father's Day dates back to Sonora Smart Dodd, who was a woman from Spokane, located in Washington. Now, this is, I'll narrate a story. She wanted to have a day to honor her father, William Jackson Smart, as he raised six children alone after his wife passed away. That is why Sonora decided that the fathers deserve the appreciation and came up with the idea of Father's Day. This was the day when the Father's Day, you know, this idea came up. The first Father's Day, it was celebrated in the year 1910, but it took many years before it became official.
जी बिल्कुल शगुन, और जैसा कि हमने बात की कि कई खास तरीकों से हम फादर्स डे को मना सकते हैं, अपने पिताओं को कोई अच्छा सा संदेश लिख कर दें, यू नो,
इंस्पायरिंग कोट्स.
बिल्कुल, और आज छुट्टी का दिन है तो अपने पिता के साथ बैठें, उन पुरानी यादों में गोते लगाएं जो बचपन में उन्होंने अपने पिताओं के साथ हम सब ने बनाई होंगी.
Yes, तो डीप कॉन्वर्सेशन इज ऑल इट टेक्स.
जी बिल्कुल, और इसके अलावा अपने पिता को कहीं बाहर घुमाने लेके जा सकते हैं. यू नो, फादर्स छुट्टी के दिन अक्सर बाहर निकलते नहीं है, अपने घर के जो काम है उनको जो काम होता है वो निपटने में
yes.
लगा देते हैं. तो ये आज का दिन जो है एक मौका है जब हम कुछ ना कुछ अच्छा अपने पिताओं के साथ नई यादें बनाएं.
समथिंग स्पेशल कैन बी डन दिस डे बिकॉज यस, अ हैप्पी हैप्पी फादर्स डे वी ऑल विल विश टू आवर लिसनर्स एज वेल एंड टू पीपल ग्लोबली, बिकॉज दिस वंडरफुल फादर्स डे इट हैज टू बी सेलिब्रेटेड इन द मोस्ट स्पेशल डे फॉर आवर फादर्स.
अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम. मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ. पापा मेरी जान हर दम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम. पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम.
After this heartfelt discussion, I would say, let's delve into the second topic that we have in our Dateline India segment. Global Wind Day is also observed every year on June 15 to raise awareness about the power of wind energy and its potential to reshape the world's energy system. Well, wind energy, it has emerged as one of the fastest growing renewable energy sources. It produces electricity without emitting greenhouse gases and reduces dependence on fossil fuels and supports the global fight against climate change. Also, wind farms, both onshore and offshore, they are now an essential part of energy infrastructures in many nations.
जी बिल्कुल शगुन, और खास बात यह है कि हवा एक ऐसी चीज जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में कितनी हमारी मदद कर रही है। कई कंपनियां किफायती प्रकार की ऊर्जा के रूप में हवा को अपना रही हैं, और ये कंपनियां पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन टर्बाइन का उपयोग करती हैं।
वेल यस, wind energy, wind is everywhere, like it is in abundance, right?
जी,
source
बिल्कुल.
And wind energy is a renewable energy source that uses the force of the wind to create electricity. Wind energy has a minimal impact on the environment and does not degrade natural resources like fossil fuels do. So wind energy is essential for decreasing the effects of climate change by reducing greenhouse gas emissions. Well, yes, so to conclude this discussion, let's use this day to reflect on the importance of harnessing the wind for a better, more sustainable future.
शगुन, अब कार्यक्रम में वक्त है कि अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलें और जाने कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में खास तैयारियां की गई हैं। जिला ग्राम सभा स्तर पर लोगों को योग से जोड़कर स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आज से पूरे प्रदेश में योग सप्ताह मनाया जा रहा है। योग सप्ताह के अंतर्गत आज से 21 जून तक सामूहिक योग कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज से योग सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध लेखन और स्लोगन प्रतियोगिताएं सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। योग के प्रचार प्रसार के लिए 5,000 प्रशिक्षित योग ट्रेनर तैयार किए गए हैं जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में योग अभ्यास करवाएंगे। प्रदेश के 4,075 स्थानों पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार 21 जून को सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ वृहद स्तर पर योगाभ्यास प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं, इसीलिए सब इससे जुड़ रहे हैं।
मैं समझता हूँ योगा से अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर नॉर्मल आदमी योगा करता है तो उसका स्वास्थ्य हमेशा और बेहतर होगा, बीमार नहीं पड़ेगा और अपने आप को फिट रखेगा, और जो फिट है वही हिट है।
प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से योग पार्क स्थापित किए जाएंगे। मंडल मुख्यालय वाले जनपदों में 3 और अन्य जनपदों में 2-2 योग पार्क चिन्हित किए गए हैं। इन योग पार्कों में पालिकाओं और पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग योगाभ्यास कर सकें। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि योग हमारी परंपरा का हिस्सा है, योग हर उम्र के लोगों के लिए है।
सारे देशों में जहां जिम भी लोग करते हैं, लेकिन योग के प्रति उनमें अवेयरनेस आ रही है। जिम क्या है, एक शारीरिक तौर पे तो आपको फिट रख सकता है, अत्यधिक एक्सर्शन भी जो है ना लोगों को नुकसान करता है। योग जो है किसी भी एज में, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक योग को आप लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फ्लेक्सिबल बनाता है बॉडी को, माइंड को भी बहुत संतुलित रखता है और सकारात्मकता से।
योग के सिद्धांतों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए एक नई पहल भी शुरू की गई है। इसमें प्राकृतिक स्थानों पर योगाभ्यास के साथ साथ वृक्षारोपण और सफाई अभियानों को भी जोड़ा जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
Well, yes, from Lucknow, let's take you to Assam. Well, listeners, do you know, Assam is the home of 1/5 of India's elephant population. According to the Assam Forest Department, over 6,000 elephants are in the state. Intriguing, listeners, right?
Mm-hmm.
Over the years, human-elephant conflict has increased significantly, causing death and destruction for both sides in almost all districts of the state. Increasing human population, shrinking of forest areas due to expansion of agricultural activities and deforestation, these are the main causes of human-elephant conflict. Almost every other day, humans lose their lives as elephants enter villages for food. We have more on this from our correspondent. Listen in.
About 1/5 of India's elephants live in Assam. The state government has taken several initiatives to mitigate the human-elephant conflict, like digging elephant-proof trenches, community-based solar power fencing, growing lemon trees, beehive fencing, and Hathi Mitra, a volunteer group. But these efforts could not provide permanent solution to deter the elephants from entering into the human-populated areas. Assam government is undertaking projects promoting cultivation of elephant apple, locally known as Outenga, in the human-elephant conflict areas. Elephant apple is one of the favorite food of the elephants. Recently, Forest, Environment and Climate Change Minister of Assam informed the Assam Legislative Assembly about the elephant apple tree planting projects in several areas. আমিনুল হক জোদ্দার, আকাশবাণী নিউজ, গুয়াহাটি।
शगुन हम अक्सर यू नो डिस्कशन करते हैं कि क्यों जो कुछ प्रकार के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के जो जानवर हैं वो क्यों खत्म होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक रीजन ये भी है कि उनका आवाज जो है वो उनसे छीना जा रहा है। अभी हमने रिपोर्ट में भी सुना कि किस तरह यू नो ह्यूमन एलिफेंट के बीच अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है।
वेल यस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन दिस इज द मेन कॉज ऑफ ह्यूमन एंड एलिफेंट और ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। वेल यस, ऑल्सो मूविंग ऑन नाउ, the 61-day annual trawling ban along the eastern coast of Tamil Nadu, which began on April 15th, ended early today, paving way for the fishermen to venture in the sea for fishing, which is the main source of their livelihood. We have more on this from our correspondent.
The fishing ban in the east coast regions of Tamil Nadu from Chennai to Kanyakumari, covering 14 districts including Park Bay and Bay of Bengal, aimed at protecting fish during their spawning season, was lifted early today after 61 days, thereby allowing mechanized fishing boats to resume fishing. The ban is particularly relevant for the Bay of Bengal. The ban was implemented under the Tamil Nadu Marine Fishing Regulation Act 1983 with the aim of conserving marine resources and protecting the breeding season of fish along the eastern coast of Tamil Nadu. During this period, fishing by mechanized boats and trawlers is strictly prohibited. The ban allows marine life to breed and replenish fish stocks during their peak spawning period, causing a shortage of high-quality fish, resulting in the rise of prices. Meanwhile, traditional boats like FRP motorized boats and non-motorized catamarans are exempted from the ban, and they were allowed to operate during the ban period. The trawling ban is a common practice in many coastal regions to protect marine biodiversity and ensure sustainable fishing practices. The 61-day ban allows fish to reproduce and strengthens the marine ecosystem. While the ban is necessary for conservation, it can be financially challenging for fishermen who depend on fishing for their livelihoods. During this period, the fishermen often rely on government support or other income sources. The Tamil Nadu Fisheries Department has deposited ₹8,000 each into 1,75,000 fishermen's account in the state as a ban period assistance. The ban being lifted, the fishermen happily ventured into their mother sea to restart fishing operations and activities in over 15,000 mechanized boats. With the fishermen back into the roaring sea, tiding the waves and singing the folk song, expecting a bumper catch, families back home are happy that their livelihood is back to normal. Seafood lovers are also happy, expecting availability of quality fish varieties in the market again. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashwani, Tiruchirappalli.
Now, let's talk about West Bengal Panchayats. West Bengal Panchayats, well, that are ahead in many aspects, including development and civic services, they will now set up learning centers and train the lagging panchayats. More than 100 gram panchayats have already been identified across the state that have achieved significant success in various fields.
Under this initiative, the public representatives of the lagging and weak panchayats will be sent to these learning centers for 2 to 3 days. From there, they will learn how to manage development work and improve the quality of service delivery at the panchayat level. After the training, the public representatives will return and work in their own panchayat following that model. In the panchayat area that has become a learning center, arrangements like homestay will also be provided at the homes of local villages for the guest public representatives. The learning center panchayat will bear all the expenses of training, accommodation and food. The panchayat department has informed that in this system, guru panchayats will be modeled. This plan is to use the experience of those who have already been awarded at the state or central level in helping others. It has been decided to set up such learning centers in several districts, including South 24 Parganas, Jhargram and West Bardhaman. This entire process is being implemented under the central government's Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan scheme. Shushmita Mondol, Akashbani, Kolkata.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा सरफिरोजी और शगुन के साथ। कार्यक्रम में अब वक्त है बात करें खेल के मैदान की और वहां की हलचल ली जाए। सबसे पहले बात टेबल टेनिस की। भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह ने आज नॉर्थ मैसेडोनिया में WTT कंटेंडर्स कॉब्जे 2025 के पुरुष डबल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारतीय जोड़ी आज लिम जोंगुन और ओह जुनसुंग की दूसरी वैधता प्राप्त दक्षिण कोरियाई जोड़ी से मुकाबला करेगी। और शगुन, आपके पास खेल की क्या हलचल है?
The BCCI has decided to constitute a committee to formulate comprehensive guidelines aimed at preventing such incidents that occurred during the IPL victory celebrations of RCB in Bengaluru. The decision was taken during BCCI's 28th Apex Council meeting yesterday. The committee will be led by Devajit Saikia as chairperson, while it will also comprise of Prab Tej Singh Bhatia and Rajiv Shukla. This committee will formulate the guidelines within 15 days. So this was the next update.
आइए अब बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों की और याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। इस कड़ी में सबसे पहले चल रहे हैं आजादी के सफर पर।
We remember freedom fighter Sirbundhan. He was in the service of the English East India Company Army, but left it during the First War of Independence in 1857 and also motivated his fellow sepoys to leave their service and take part in the struggle for freedom from the oppressive foreign rule.
He fought the company on several occasions and was finally caught in an encounter, charged with desertion and mutiny against the British authorities. Sirbundhan was sentenced to transportation for life with hard labor and irons on the 15th of August, 1857. He died there in detention on the 15th of June, 1858. The great nationalist.
June 15th is also the death anniversary of Harilal Shah. He participated in the Dharasana Salt Satyagraha in May 1930. When Gandhiji decided to go for the Dharasana Salt Satyagraha, he wrote to Viceroy Irvin and told him about his plan. To prevent Gandhiji from acting, he was arrested on the 4th of May 1930 and detained near Pune. The Dharasana Satyagraha went ahead as planned by Gandhiji, with Abbas Tayabji leading the march with Kasturba Gandhi at his side.
Both were arrested before reaching Dharasana and sentenced to 3 months of imprisonment. After their arrests, the Satyagrahis, including Harilal Shah, continued the march under the leadership of Sarojini Naidu, who warned them,
"You must not use any violence under any circumstance. You will be beaten, but you must not resist. You must not even raise a hand to ward off blows."
As apprehended, the armed forces began clubbing the Satyagrahis with steel-tipped lathis in an incident on the 22nd of May 1930, and many Satyagrahis, of whom one was a badly injured Harilal Shah. Later, Harilal Shah succumbed to his injuries on the 15th of June 1930. The great nationalist.
We also remember Gandhian freedom fighter Kushal Konwar. On the 10th of October 1942, hidden in the thick fog of early morning, some people removed a few sleepers from the railway line near Sarupathar in Golaghat district. A military train passing by derailed and many British and American soldiers lost their lives.
Accusing Kushal Konwar of being the chief conspirator of the train sabotage, the British police arrested him. At dawn on the 15th of June 1943, at 4:30 a.m., Kushal Konwar was hanged at Jorhat Jail. The great nationalist.
Well, listeners, today we are also remembering one of the finest actresses in the history of Indian cinema, Suraiya Jamal Sheikh. Well, yes, she is known for her strong on-screen portrayals in a variety of genres.
अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया जमाल शेख ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। वो पास रहें या दूर रहें, नुक्ता ची है गमे दिल और दिले नादा तुझे हुआ क्या है जैसे गीत सुनकर आज भी जहन में सुरैया की तस्वीर उभर आती है। संगीतकार नौशाद ने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुनकर सुरैया की आवाज सुनकर ही उन्हें फिल्म शारदा में गीत गाने का मौका दिया। आइए सुनते हैं उनके गाए कुछ मशहूर गीत।
नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बना, नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
Well, after listening to that beautiful medley, let's talk about another personality today, John Vincent Atanasoff. Physicist and inventor, he's credited with inventing the first electronic digital computer. He invented the first electronic digital computer in the 1930s at Iowa State College. Well, his road to inventing the first electronic digital calculator, it began with a much simpler device, which was the slide rule his father had given him as a boy when he was a child. And not only did it solve math problems, it stoked young Atanasoff's fascination with computing, and hence he invented the machine.
आज सज्जाद हुसैन जी की भी जयंती है। ये भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अरबी शैली के संगीत के टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर सज्जाद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से ईजाद किए। सन 1937 में सज्जाद हुसैन ने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और चले आए अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ मुंबई। उन्हें पहली नौकरी सोहराब मोदी के मिनरवा मूवीटोन में 30 रुपये महीने पर मिली। दिल, सैया, खेल, हलचल और रुस्तम सोहराब जैसी फिल्मों से अनूठा संगीत देने में ये सफल रहे। आइए सुनते हैं इनका एक गीत।
ये हवा, ये रात, ये चांद, तेरी एक अदा बेमिसाल है। ये हवा, ये रात, ये चांद, तेरी एक अदा बेमिसाल है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो तेरी दूसरी।
Now I'm going to talk about a singer, queen of jazz, referred to often, well, by her fans mainly, Ella Fitzgerald. Well, she was noted for her purity of tone, impeccable diction, phrasing, timing, intonation and absolute pitch, and a horn-like improvisational ability, particularly in her scat singing. So to listen to her voice, I have specifically picked up this song, which is called Blue Skies.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds.
आज जिया फरीदुद्दीन डागर जी की भी जयंती है। ये भारत के मशहूर ध्रुपद गायक थे। शानदार ध्रुपदिया गायक उस्ताद जियाउद्दीन डागर के बेटे फरीदुद्दीन ने अपने दिवंगत भाई जिया मोहिदुद्दीन डागर के साथ मिलकर ध्रुपद शैली के गायन को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है। उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर उस परिवार से हैं जिसने 19 पीढ़ियों तक ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया। आइए सुनते हैं उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और पंडित ऋत्विक सान्याल की ये जुगलबंदी।
Let's talk about another musician now, Waynell Jennings, singer-songwriter, and also he has acted in movies as well. He's considered one of the pioneers of the outlaw movement in country music. So let's listen to this song. This is called This Time.
This time If you want me to come back, it's up to you. But remember.
श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ अनुमति दीजिए सरफिरोजी और शगुन को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।